ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरु वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पामनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय फलभक्ताय नमो नमः। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये चित्ताक्ष कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जिहाव पुत्रेति तन्मेतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनानुतोऽस्मि। त्वैवास्मि त्वैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मे मां चरणम्। एक समय की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हो गया था और पिता के आदेश को पालन करने के लिए रामचंद्र जी दंडकारण्य में पहुंच गए। उस समय में रावण मृगा का रूप धारण कर सीता को हर ले गया, दान करा करके मारी से, और रामचंद्र जी लक्ष्मण को भाव देकर के जब चले गए मृगा के पीछे, रावण ने कपटतापूर्वक साधु संन्यासी का वेश धारण कर और उनको हरण करके ले गया। ये लोग लौटे सीता जी को नहीं देख सकते, राम विफल हो गए और फूट फूट करके रेन होने लगे। प्रेम में ऐसे विवश हो गए, विरह में पेड़ों से भी पूछने लगे, गोदावरी नदी से पूछने लगे कि मेरी प्यारी सीता जी कहां गई। लक्ष्मण जी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, वो भी सांत्वना इत्यादि नहीं दे पा रहा है। और उसी समय में कैलाश में शंकर जी को इच्छा हुई जे भगवान का हम दर्शन करें, और वो जब आए तो सती जी ने कहा जी मैं भी चलूंगी, उनके साथ में वो भी आए। दोनों दंडकारण्य में राम को विलाप करते हुए सीता के विरह में तड़पते हुए देखा। शंकर जी ने उनकी लीला में कोई बाधा न देकर उनको साष्टांग प्रणाम किया दूर से छिपकर, और छिपकर प्रणाम करने के बाद में उनकी बहुत दूर से परिक्रमा की और परिक्रमा करके फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके मन ही मन में स्तुति की और फिर लौटने लगे। उनकी कहीं लीला में कोई बाधा न हो जाए। इतने में सती जी ने पूछा प्रियतम ये कौन है जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने कि हमारे आराध्य राम हैं श्री रामचंद्र जी। तो हमने तो सुना है, सती जी ने कहा, एक निराकार निर्गुण परब्रह्म अव्यक्त अनादि और सबके हृदय में व्याप्त रहने वाले श्री राम हैं, वो जगत के आराध्य हमने सुना है। और इनको मैं देख रहा हूँ ये महाराज दशरथ अयोध्या के जो राजा हैं उनके ये लड़के हैं, और यहाँ पर इनकी पत्नी की चोरी हो गई है और ये समझ नहीं रहे हैं ये हमारी इस पत्नी को कौन ले गया, ये भी नहीं जानते हैं और बिलख बिलख करके रो रहे हैं। इनको तनिक ज्ञान नहीं है, एक स्त्री के मुंह में इतना रोना ये कौन है मेरी समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा शंकर जी ने, प्रिय देखो हमने ठीक ही कहा है, ये हमारे आराध्य हैं, यही सगुण निर्गुण सबके आधार, यही समस्त विश्व का सृजन सृष्टि संहार करने वाले, यही सर्वस्व हैं, हमारे आराध्य हैं, इसलिए मैंने इनको प्रणाम किया। तुमको यदि कुछ संदेह हो तो इनकी परीक्षा कर लो। सती जी ने देखा जिसे अब परीक्षा कर नहीं लेनी अच्छी है, इसलिए कैसे परीक्षा करेगी। शंकर जी आगे चल पड़े और एक वटवृक्ष की छैया में वहीं पर बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगे और ये वहीं पर कुछ ठहर गई और ठहर करके देखा जी इनकी परीक्षा कैसे ले। यदि मैं सीता जी का रूप बना लूं और जब ये सीता जी का रूप देखेंगे तो दौड़ करके हमारे पास में आएंगे और हम गले से मिल जाएंगे और बड़े खुशी हो जाएंगे, तब समझेंगे जे ये दशरथ के पुत्र साधारण एक मानव है, ब्रह्म नहीं है। और यदि ये मुझे पहचान गए किसी तरह से जान गए तब तो मैं समझ जाए यही पर ब्रह्म है, शंकर जी के उपास्य और विश्व ब्रह्मांड के उपास्य है। सती जी को ये भाव था ब्रह्म निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, वो निर्गुण है, उनमें कोई शक्ति नहीं होती, वो अव्यक्त हैं, अनादि हैं, उनकी धारणा थी। यदि उनका रूप होगा तो सब जगत में व्याप्त कैसे, सब जगत सबके अंतर्यामी कैसे होंगे, और जब उनका रूप कोई होगा तो उनका जन्म मरण भी जरूर होगा, जो कोई शरीर धारण करता है वह जन्मता मरता है, वो विश्व सृष्टि का कारण कैसे बन सकता है और सबके हृदय में कैसे प्रवेश कर सकता है, उनके समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सोच करके उन्होंने सीता जी जैसा ठीक सीता का अविकल रूप बना लिया और बना करके पास ही की एक झाड़ी के पास में खड़ी हो गई। राम प्रत्येक पेड़ों से पूछ रहे थे हमारी प्रिया जी को देखा, हमारी प्रिया जी को देखा, और वो ठीक सामने आकर के खड़ी हो जाती, किंतु राम उनको नहीं देखते, जैसे ये हमको देखा नहीं इसने इसलिए हमसे पूछा नहीं या हमको पकड़ नहीं लिया, इसलिए वो फिर पीछे से जिधर राम जाते थे फिर उधर से आकर के उनके सामने खड़ी हो जाती। तीन चार बार ऐसा किया तब राम को दया, इस पर दया करने के लिए उन्होंने हाथ जोड़ करके उनसे कहा माता जी आप यहां पर कैसे खड़ी हैं, अकेले खड़ी हैं, शंकर जी भोलेनाथ कहां गए, वो किधर गए, आपको अकेले यहां देख रही हूं देख रहा हूं। छठिए समझ अरे ये कैसे जान गया, ये जान कैसे गया, तब तो यही परब्रह्म है, उनका मोह दूर हो गया, उनके चरण में गिर गई, जब ही चरण में गिरी तो उन्होंने देखा क्या राम सीता लक्ष्मण तीनों बड़े प्रसन्न चित्त से वहां पर खड़े हैं, जिधर दृष्टि जाए इधर देखा था उधर ही तीनों हैं, इधर देखा तो उधर ही, सारा विश्व में जहां जहां उनकी नजर गई देखा राम और सीता कहीं अलग नहीं है, दोनों हैं। देख करके वो झट गई, गिर करके प्रणाम करके जब उठी तो देखा क्या राम और लक्ष्मण केवल हैं, और राम बिलाप कर रहे हैं, हासीते हासीते तू कहां गए, और इनको भूल गए, और दूसरी ओर जाकर के पूछने लगे। सती जी को बड़ा ग्लानि हुई, मैंने अपने गुरु और पति शंकर की बात नहीं मानी, उन पर विश्वास नहीं किया, तो मेरा अधोपतन निश्चित है। जो लोग गुरु के बात पर, यदि गुरु ऐसा सच्चा गुरु हो, सदगुरु हो, शास्त्रों का जानने वाला, भजन परायण, भगवान की उपलब्धि करने वाला ऐसा यदि गुरु हो, और उस गुरु पर कोई विश्वास न करे, बात न माने, तो उसका अधोपतन निश्चित है। इसलिए बड़ी डर गई। डरने के बाद में देखा जी हमारी धारणा तो गलत है, अरे इनका तो परब्रह्म का रूप है, और सीता जी से इनका वियोग नहीं है, ये तो मालूम होता है लीला कर रहे हैं। मोह दूर हो गया, डरती हुई सुखचाती हुई धीरे 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 शंकर की तरफ में चला। शंकर जी प्रतीक्षा कर रहे थे, बोले आपने अब इस धर पे प्रिया नहीं कहा, उन्होंने कहा आपने परीक्षा कर ली, हे नाथ में क्या परीक्षा करूं, मैं क्या परीक्षा करूं, वो परब्रह्म है, आपकी बात झूठी नहीं, आपने कोई परीक्षा ली, मैं उनके क्या परीक्षा लूंगी, अब गुरु जी से झूठ भी बोला पति से, मैं उनकी क्या परीक्षा लेती, मैंने परीक्षा नहीं। अच्छा ये छिपा भी रही हैं हमसे। उन्होंने मनी मन में संकल्प किया, देखो इन्होंने हमारी आराध्या देवी सीता का रूप बनाकर और परीक्षा ली हमारे लिए, ये मैं ब्रह्म हूं कि नहीं हूं, मैं सर्वांतर्यामी हूं कि नहीं हूं, मैं समस्त लोगों के हृदय में रमण करता हूं कि नहीं, सर्वव्यापक हूं कि नहीं, और सर्वज्ञ हूं कि नहीं। इसलिए सीता जी हमारी मैया हैं, आदि जननी हैं, जगत की जननी हैं, इसलिए जब वो रूप बनाया तब तो ये मेरी माता मैया हो गई, अब उनको पत्नी के रूप में मुझे अंगीकार नहीं करना, मैया के रूप में हम उनको अंगीकार करने पाए, आज से मेरी ये माँ हो गई। आ रहा है समझ में, स्त्री होने पर भी जो सीता जी का रूप बनाया, इसलिए मैं अब इनको मैया के रूप में ग्रहण करूंगा, आप अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं करूंगा। जब उन्होंने संकल्प किया, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, आपके अतिरिक्त ऐसी प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता। इसके बाद में आश्रम में लौटे, आज आसन उनको दिया सामने, पहले आसन देते थे बाएं तरफ, आज सामने आसन दिया, जैसे मैया को आसन देते हैं, इसलिए अब सती जी से रहा नहीं गया, अजय इन्होंने हमको प्रत्याग कर दिया और मैया के रूप में ग्रहण किया, और पत्नी के रूप में, सेविका के रूप में अब ग्रहण नहीं करेंगे हमको। क्यों, दो तीन बातें इसमें ये शिक्षा देनी थी कि भगवान का रूप है, उनमें विश्व के जितने निर्मल गुण हैं, अप्राकृत गुण हैं, दया है, माधुर्य है, सर्वज्ञता है, सब प्रकार के ज्ञान है, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य हैं, षड़ैश्वर्य परिपूर्ण ये भगवान है, ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्योश्चय वसन ना भगवान, इसलिए ये भगवान है। तो ये लोगों की ये धारणा, फिर क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, सीता जी ने कहा, सती जी ने सोचा, अब जब माता के रूप में इस शरीर को ग्रहण कर रहे हैं, पति पत्नी के रूप में नहीं, अब इस शरीर को रखना नहीं, इसलिए उन्होंने कहा अब शरीर नहीं रखना। तो उन्होंने क्या बहाना बनाया, उसी समय उनके पिताजी दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, और सब लोगों को निमंत्रण किया, शंकर जी को नहीं बुलाया, क्योंकि उनसे वो शत्रुता समझता था, शंकर जी के तत्व को नहीं समझता था, इसलिए नहीं बुलाया, और सती जी को भी, अपनी बेटी को जो सबसे छोटी प्यारी बेटी थी, उसको भी नहीं बुलाया, और सब लोग जितने ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि देवता लोग विमान में बैठ करके जा रहे थे उसके यहाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ, दक्ष प्रजापति का उस समय स्थान अभी जो हरिद्वार है, वो हरिद्वार में था, वहीं पर यज्ञ किया था, सती जी ने देखा जी सभी लोग जा रहे हैं और मैं अपनी मैया के घर में पिता के घर में नहीं जाऊंगी, तो मुझे भी चलना चाहिए। देखा जी हमारी जितनी बहनें हैं सब बहनें जा रहे हैं और मैं नहीं जाऊंगी, रहा नहीं गया। शंकर जी से बोली, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं पिताजी के पास में जाऊं, मैया से भेंट करके उस यज्ञ में भाग लूं। उन्होंने कहा जी देखो एक बात है, बिना आदर के कहीं नहीं जाना चाहिए। वो हमसे शत्रुता करता है, इसी नाते तुमसे भी अब शत्रुता करता है, तुमको वो भी प्यार नहीं करेगा, विरोधाचरण करेगा। गुरु के यहां बिना बुलाए जाओ, माता पिता के पास में बिना बुलाए जाओ, बात तो ठीक है, किंतु यदि देखो जैसे वो विरोधी है तो मत जाओ मैया के पास। गुरु तो कभी विरोधी हो ही नहीं सकता, कभी संभव पर नहीं, किंतु माता पिता विरोधी हो सकते हैं, बिना बुलाए मत जाओ। अब तो और बिगड़ गई, पैरों से पृथ्वी को परपीटने लगी और रोने लगी, छटपटाने लगी और जाने के लिए प्रस्तुत हो अकेले ही चल दिया। शंकर जी ने पीछे से अपने गणों को और नंदी को भी उनके साथ में भेज दिया। जब वहां पर पहुंची तो पिता ने आज बोल चाल भी नहीं की, कुछ पूछा नहीं, उनकी बहनें भी डर से, पिताजी के डर से नहीं बोली, सम्मान नहीं किया, केवल मैया थोड़ी देर के लिए दो बात एक बात की और किसी ने नहीं किया। यज्ञशाला में गई, देखा जिसे सब देवताओं को आदर करके भाग दिया गया है, उनके पति को नहीं, और वहां पर उनकी निंदा हो रही है। उन्होंने योग अभ्यास से अपने शरीर से ही बैठ करके अग्नि उत्पन्न की और उसी में जल करके खाक हो गई। क्यों? पिता का अपमान बहाना है मैया का, गुरु की बात नहीं मानने वाले की कुछ ऐसे ही दुर्गति होती है। शंकर की बात उन्होंने नहीं मानी, अविश्वास किया, एक तो बात ये, और उनके बिना कहे हुए वहां पर गई। किस लिए? अब नया शरीर धारण करके शंकर जी की आराधना करके उनसे शादी करूंगी, इसलिए अब ये शरीर से संभव पर नहीं है। अंत में ऐसा ही हुआ, हिमाचल के घर में उन्होंने जन्म लिया और फिर शंकर जी से उनकी शादी हुई। ये सब रामायण में, तुलसीकृत रामायण में और वाल्मीकि रामायण और सर्वत्र इसका वर्णन। कहने का तात्पर्य यह है, बहुत से लोगों की धारणा है, कुछ लोगों हमसे प्रश्न भी पूछा है कि भगवान का तो रूप नहीं, आकार नहीं, वो तो निर्गुण है, निरंजन है, निराकार है। जब जगत में उनकी कृपा होती है तो कोई मनुष्य का रूप धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं, इसलिए भगवान का कोई रूप नहीं। जब जरूरत होती है तो मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं, इसमें आते हैं, इसलिए उनका असल में कोई रूप नहीं। यह बात संपूर्ण गलत है। तुलसीदास जी का, व्यास जी का, भगवान का, वेदों का, उपनिषदों का, पुराण में, रामायण में कहीं भी ऐसी बात नहीं लिखी है जो ऐसा कहते हैं, संपूर्ण गलत कहते हैं। अवतार माने क्या? ये मैं इसलिए बतला रहा हूं कि ये निष्ठा आपकी ठीक रहेगी तो भजन कर सकेंगे, नहीं तो भजन नहीं करेंगे, इसलिए इसको जानना आवश्यक है। बहुत से बड़े बड़े विद्वान को, वैष्णव लोगों को भी ऐसा सुना है कहते हुए, किंतु यह गलत धारणा है। वेदों में, उपनिषदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा। हम इसके लिए कुछ युक्तियां दे रहे हैं, शास्त्र का प्रमाण दे करके आपको पुष्ट करके फिर हम आगे अपने विषय में आएंगे, क्योंकि यह विषय भी बहुत जरूरी है। उतरना, अवतार माने जैसे हैं वैसे ही उतरने का नाम अवतार है। ऐसा नहीं कि उनका रूप नहीं आया, पीछे से उन्होंने रूप लिया और फिर भगवान अपने शरीर को छोड़ दिया और निराकार बन गया, ऐसा नहीं। जिस शरीर से नित्य विराजमान रहते हैं सच्चिदानंद भगवान हैं, गोलोक वैकुंठ में या अयोध्या में उनका वह रूप नित्य है, वहां पर नित्य लीलाएं होती हैं। जब जगत पर कृपा करनी होती है उसी रूप को लेकर के उतरते हैं, इसलिए उनको अवतार कहते हैं। ऐसा नहीं जो उनका अवतार था ही नहीं, उनका रूप ही नहीं था, यह गलत धारणा है। क्यों? अब थोड़ा सा हम शास्त्रों का विचार लेकर के चलते हैं, इसमें उपनिषद का विचार लेंगे, वेदांत शास्त्र का विचार लेंगे, भागवत का, रामायण सबका ही। आपने पहले रामायण से इसी दिखलाने के लिए इस कथा को मैंने कहा, यह तुलसीकृत रामायण वाल्मीकि रामायण में सर्वत्र है ने? उनका भ्रम दूर हो गया, किनका? सती जी का, उन्होंने देखा जी ये रूप, उसी रूप को लेकर के वो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं, उसी रूप लेकर के आते हैं, शरीर नहीं छोड़ते भगवान, भगवान नहीं मरते कभी, कभी जन्म नहीं लेते, भय प्रकट कृपाला दीन दया कौशल्या हितकारी, भय प्रकट, जन्म नहीं लिया भगवान, क्या हुआ? प्रकट हुए, पहले उनको दिख नहीं रहे थे, अब यहां पर प्रकट हो गए, जैसे आग सर्वत्र है, हमारे शरीर में भी आग है, यहां भी आग है, वहां भी आग है, सर्वत्र, मैचेस में भी आग है, मैचेस का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसमें ऐसे लगाइए, आग निकल आएगी, वो प्रकट हुई, जन्म नहीं लिया, पहले नहीं, आग ही नहीं थी और वहां आग हो गई, ऐसा नहीं, एक पत्थर के ऊपर में एक पत्थर का टुकड़ा जोर से मारिए, देखिए उसमें आग निकल आएगी, हमारे शरीर में भी आग है, सर्वत्र आग है, देख नहीं रही, वैसे भगवान का वह सच्चिदानंदमय रूप इन जड़ नेत्रों से नहीं दिखता, इसलिए उनको निराकार कहते हैं। जतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति अभिशम विशन्ति तद्विजिज्ञास तद् ब्रह्म। ब्रह्म किसको कहते हैं? जिससे समस्त प्राणी, समस्त सारा विश्व निकला है, जो समस्त जगत का पालन पोषण करते हैं और अंत जगत उस जिसमें समा जाता है उसको ब्रह्म कहते हैं। अब जिससे जगत पैदा हुआ उसका रूप है कि नहीं, ये थोड़ा सा विचार करेंगे। जैसे आम के पेड़ में फल लगा, उसमें गुठली होती है, गुठली को किसी एक जगह में लगा दो और पानी दो, क्या होगा? अंकुरित होकर के उसे जो पेड़ होगा, अब उस पेड़ में कैसा आम होगा? जैसा बीज है वैसा ही होगा ना? जिस चीज से जगत की निर्माण हुआ है उस चीज में रूप है कि नहीं? यदि उसमें रूप नहीं है तो ये रूप कहां से आ गया? अरे बाप का रूप ही नहीं है तो बेटा का रूप कहां से आ गया? ये तो विचार करो। यदि ईसा मसीह, ईसा मसीह पुत्र है किसके? गॉड के, तो गॉड का रूप नहीं होगा? अरे बाप का ही रूप नहीं रहा तो उसका बेटा का कैसे रूप है? मैया बाप का रूप नहीं रहा, फ्रॉम नथिंग कुछ नहीं निकलता, देर मस्ट बी समथिंग एंड गॉड इज होल थिंग। पूर्णम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव पूर्णमेव, भगवान परिपूर्ण है, अखंड वस्तु पूर्ण है, उनसे भगवान का लाखों रूपावतार निकलते हैं, जो निकलते हैं वो भी पूर्ण और जो जिससे निकला वो भी पूर्ण, भगवान कभी भी अपूर्ण नहीं, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हरा समझ में? यदि कोई पूर्ण चीज है, पूर्ण में से कुछ भी ले लो, पूर्ण भी ले लो तो वो पूर्ण ही रहेगा। जो चीज जीरो है उसमें कोशिश चीज को लेने का कोई बात ही नहीं, कैसे लेंगे? इसलिए फ्रॉम एनीथिंग एवरीथिंग कनेक्ट बी क्रिएटेड। जो शून्य खुद ही है, जिसमें शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, जिसमें खुद रूप नहीं है, जिसमें रोग कोई पोटेंशी नहीं है, उसे ये इतना लाखों रूप वाला विश्व कैसे पैदा हो जाएगा? असंभव होगा। इसलिए वो वस्तु पूर्ण होनी चाहिए, जो कुछ है ही नहीं उसे क्या निकलेगा? ये जीरो, इससे कोई चीज निकल जाए तो नहीं निकलेगी जीरो से, इसलिए भगवान में संपूर्ण रूप है, मनुष्य ही रूप ऐसा है, इतना सुंदर रूप कि उसे कोई भी रूप निकल सकता है। डार्विन की यह थ्योरी कि पहले बंदर था, बंदर से मनुष्य हुआ, ये संपूर्ण उसे भ्रामक है। अरे हमारे यहां तो देखने में साक्षाती रूप में मनु और सतरूपा पहले मनुष्य थे, उसके ही सारे ये सब विश्व में ये सब फैले हुए हैं, उन्हीं की संतान है, सब से लेकर के मनुष्य तक। इसलिए गलत थ्योरी है। तो आज यदि बंदर से मनुष्य हो जाता है तो मनुष्य से फिर कोई नई चीज क्यों नहीं पैदा हो जाती लाखों करोड़ों वर्षों में। डार्विन तो मर गए, किंतु डार्विन के चेले अभी भी बहुत से लोग हैं, इसलिए थोड़ी संपूर्ण से भ्रामक है, बंदर से मनुष्य नहीं हुआ। ये दुनिया सब एक साथ में भगवान ने निकाली ब्रह्म के द्वारा। लोग कहते हैं जब भारतवर्ष में ये लोग आर्य लोग बाहर से आए, ये संपूर्ण से भ्रामक, ये पाश्चात्य लोगों की देन है भारत को सर्वदा गुलाम बनाने के लिए। ये ऐसी बात है, आर्य भूमि वही है, भारत है, यहीं पर मनुष्य सतरूपा मनु ब्रह्मा इत्यादि सब यहीं से पैदा हुए। इसलिए भगवान निराकार है, ये बात संपूर्ण रूप से गलत है। देखिए एक चीज, हमारे अंग्रेज लोग भी, अंग्रेज में नहीं शाही लोग, भगवान का रूप नहीं मानते, चर्च में उसका कोई मूर्ति नहीं रखते, किंतु बाइबिल में लिखा है गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। माने क्या होगा, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, गॉड ने अपने रूप के समान में मनुष्य को बनाया, तो भगवान का गॉड का रूप होना चाहिए ना मनुष्य के समान। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में लिखा है सदैव सम्य इदम् अग्र आसीत्, भगवान का रूप ही आदि रूप है मनुष्य रूप, वही कृष्ण का रूप है, राम का रूप है, उनसे ही ये सब निकले हैं, वही मनुष्य ही नहीं सारा विश्व निकला है उससे। इसलिए भगवान का रूप है। दूसरी बात, तब उनको निराकार क्यों कहा गया, शास्त्रों में तो निराकार लिखा गया, इसलिए लिखा गया कि भगवान का यह रूप है ये जागतिक हाड़ मांस श्याम का रूप नहीं है, ये सच्चिदानंद रूप है, सच्चिदानंद रूप घन रघुराया, या क्या लिखा है। राम का रूप कैसा है, सच्चिदानंद, प्राकृत नेत्र से देखा नहीं जा सकता। एक उदाहरण के लिए ले लो पानी, पानी का रूप क्या है, पानी को कटोरी में रखो तो कटोरी का रूप हो जाएगा, ग्लास में रखो तो ग्लास में, थाली में थाली में, समुद्र में तो समुद्र का आकार, जहां भी जिस रूप में रखो उसी का रूप धारण कर लेता है। इसलिए साइंटिस्ट लोग इसको डिफाइन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने देखा जे वाटर इज शेपलेस, क्योंकि उसके कौन से रूप को कहेंगे, वो तो जिस चीज में रहेगा वैसा ही रूप धारण कर लेगा। दूसरी बात, पानी का टेस्ट कैसा है, पानी का टेस्ट होता है, किंतु जहां की भूमि जैसी होती है उस भूमि के स्वीटनेस को, खारापन को, या मिठापन को, या जैसा वहां की मिट्टी होगी उसी में उसका टेस्ट लग करके कुछ वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसलिए ये लोग कहते हैं डिफाइन नहीं कर सकते, पानी के रूप को नहीं डिफाइन सकते, पानी को आंख से देखते हैं कि नहीं देखते, जब देखते हैं तो रूप नहीं है तो ऐसे ही देख लिया, जब हवा लगती है शरीर में तो कोई चीज है कि नहीं है, जरूर है, किंतु साइंटिस्ट कैनॉट डिफाइन इट, सो दे हैव कॉल्ड इट व्हाट, वाटर इज शेपलेस, वाटर इज कलरलेस, वाटर इज टेस्टलेस, किंतु ये सब है वह पानी में। एक साधारण जगत के रूप चीज को पानी का ही ये डिफाइन नहीं कर सकते रूप गुण क्रिया, तो भगवान का रूप है, भगवान जैसा रूप चाहेगा वैसा धारण कर सकता है, उसमें सब रूपों की पोटेंसी है, उसमें समस्त स्वाद है, उसमें समस्त गुण है, किंतु यू कैन नॉट डिफाइन। इसलिए हमारे ऋषि मौसी लोग अवांग मनसोर भगवान के रूप को, गुण को, लीला को समझ नहीं सके, इसलिए उन्होंने कह दिया क्या, भगवान मेरा, क्योंकि ऐसे इस प्रकार से हम देखते हैं मुसलमान भाई लोग हमारे भी नहीं मानते उनका रूप, किंतु कुरान में भी लिखा है ऐसा, इन्ना अल्लाह खलाका मिन सूरत ही, सूरत माने क्या है, रूप, खुदा तल्ला का बहुत ही सुंदर रूप है। यदि सुंदर रूप नहीं होता, विचार नहीं होता, तो मरने के बाद में किसी समय में सबका लेकर के विचार करते हैं, वो विचार कैसे करते, कैसे विचार करेंगे, उनको पाप पुण्य का फल कैसे देंगे। इसलिए कुरान भी ये कहता है कि भगवान का रूप है। यदि नहीं होता तो आकाश में ही क्यों नहीं पूजा करते, चर्च बनाने की, मस्जिद बनाने की जरूरत क्या थी। इसलिए किसी न किसी रूप में जगत का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भगवान का किसी न किसी रूप में रूप मानता है। हमारा सनातन धर्म भगवान का सब समय रूप मानता है, उनका रूप ही सनातन है, नित्य है। उसी को गोलोक वैकुंठ से जगत के कल्याण के लिए नीचे उतरते हैं। हमारे जयपुर में गोविंद जी का विग्रह है, वो चलते थे, बोलते हैं, कहते हैं कि हमको ये चीज मीठी प्यारी है, हमारे नाक में ये पहना दो, नत पहना दो। हमारे साक्षी गोपाल अभी आजकल हैं साक्षी में, पुरी के पास में, जगन्नाथपुरी। साक्षी देने के लिए अपने पैरों से चल करके हजारों मल वृंदावन से चले गए वहां दक्षिण भारत में और साक्षी दी। इसकी बहुत कहानी लंबी है। यदि न रहते तो गोवर्धन गिरिराज तो पत्थर है, उनकी परिक्रमा लाखों करोड़ों लोग और चित्रकूट की लाखों लोग परिक्रमा किस लिए करते हैं, जो ही मनोती करते हैं वही पूरा हो जाता है। ऐसे ही नहीं, अंधविश्वास नहीं है। इसलिए इस प्यार को ठीक से रखिए, जो भगवान का रूप है और उनका रूप कभी जन्मता मरता नहीं है, उसी रूप को लेकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं और फिर उसी रूप में जब जरूरत हो तो पधारते हैं। राम के लाखों अवतार हुए किंतु सभी एक ही समान रूप, कोई अंतर नहीं हुआ। और कृष्ण के भी लाखों करोड़ों बार आविर्भाव हुआ है, अवतार लिए हैं, आए हैं, किंतु सब समय वही मुरली मोहन बात बंसी मोर मुखो पीतम्बर धारण किए हुए बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रत वास कनक कपिशं वैजयंती चमान अरंधान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप बिंदई बृंदारण्यम शपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ये कृष्ण का और रामचंद्र जी का ऐसा कोई रूप है जो ध्वंस और बाण साथ में नहीं हो, ऐसा कोई है, सीता जी साथ में न हो, इसलिए इनका नित्य रूप है। अभी अवतार फिर लेंगे अगले ब्रह्मा जी के एक दिन में फिर लेंगे, फिर वैसा ही है। किंतु उस समय रावण रहेगा कि नहीं, वो रावण का तो उद्धार हो गया तो फिर वही अब जय विजय रावण बन करके अब नहीं आएंगे, दूसरा कोई होगा उसका निमित्त कारण बन करके उसका वध करेंगे या और लीलाएं होंगी, किंतु राम का रूप यही रहेगा, कृष्ण का रूप यही रहेगा। हो सकता है कि उस समय कंस ना आए, कंस का उद्धार हो गया ना, पूतना नहीं आएगी, दूसरे लोग असुर होंगे या दूसरी कोई ऐसी लीला होगी जो जगत के लोगों को एकदम मुग्ध कर लेंगे और उन लीलाओं का जो गान करेगा, उसका जो श्रवण करेगा, उसको इस जगत से मुक्ति होकर के अपनी सेवा में उनको दे देंगे। इसलिए इस चीज को समझें। एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, अभी तो 15 मिनट, एक बात और कहूंगा। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, इसका अर्थ क्या है? लोग कह देते हैं कि ये भी सिया राम है, वो भी सिया राम है, वो भी सिया राम है, पेड़ पौधे जितने भी हैं, जड़ चेतन जो कुछ है, वो सब सिया राम है। विश्व ब्रह्मांड में सभी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है, ऐसा मत समझो। यदि ऐसी बात है तो हनुमान जी सीताराम क्यों नहीं हो गए? उनसे बढ़कर के कोई परतत्व को जानने वाला है तो वो क्यों नहीं हो गए मुक्त होने के बाद में? मुक्त तो वही है। अरे सबसे शंकर जी और पार्वती जी उनके तत्व को जानने वाले, कार्दूसुंडी जी उनकी सब कथाओं को कहने वाले, वाल्मीकि जी, तो फिर ये वाल्मीकि क्यों रह गए? ये लोग क्यों नहीं ब्रह्म बन करके राम बन गए, निराकार बन गए? ये लोगों को धोखा देने की बात है। आप हम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के अंश हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं, तुलसी का तो बार बार बातें हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। माया के वश में भ्रमित होकर के ये जीवन है। अरे ब्रह्म को माया स्पर्श नहीं करती, इसलिए यदि हम ही सभी ब्रह्म हैं तो इस जगत में आए कैसे, दुख क्यों भोग रहे हैं, बिलबिलाते क्यों हैं, रोते क्यों हैं, मरते और फिर जन्म लेते क्यों हैं, यदि आप ही ब्रह्म हैं तो। इसलिए ऐसी भावना एकदम सर्वथा गलत है, इसी को अद्वैतवाद या मायावाद कहते हैं। ये भक्ति का विरोधी ये ज्ञान है। जिन लोगों का ऐसा विचार का उनको कदापि किसी जन्म जन्मांतर में भी भक्ति नहीं होगी, इसको गांठ बांध करके रख लेंगे। विशेष करके जो पाठक जो आते हैं ना, सप्ताह रामायण का पाठ करते हैं या भागवत का पाठ करते हैं, उनको कुछ अकल नहीं होती। उसमें बिरले ही कुछ तत्वों को जानने वाले परम भगवत भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, जो इन तत्वों को जानते हैं, और नहीं तो बस ऐसे ही उल्टी सीधी बातें बतलाते हैं। क्योंकि सदगुरु की सेवा तो की नहीं। सुखदेव जैसे, गोस्वामी जैसे, परीक्षित महाराज जी जैसे, नारद जी जैसे लोगों से इन लोगों ने नहीं सुना, गुरु तो करण किया नहीं, ऐसे तैसे जहां से जो बात उठाई पकड़ा। इसलिए ऐसी बात नहीं, आप लोगों को ये सब बातें बतला रहा हूं इसलिए कि आप लोग भजन करेंगे। इसके बदले में मैं कुछ नहीं चाहता जो आप हमको दो पैसा प्रणामी दे देंगे। मैं आप लोगों को देने के लिए ही भारत से आया हूं, इस चीज को समझेंगे। हमको कोई चीज का स्वार्थ ही नहीं है, इसलिए आप लोगों को मैं सच्ची बात बतलाऊंगा। इसलिए इस रूप में समझ करके आप लोग हरि भजन करेंगे तब तो भजन होगा, नहीं तो ये सब बेकार का हो जाएगा। इसलिए आप सभी ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और गीता में भी ममई वांसो जीव लोके जीव पुत्र। अब यहां पर तो साफ लिखा गया है, सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पाए। इसका अर्थ क्या होगा? विशेष करके कल्याण गीता प्रेस के कल्याण ने कुछ गड़बड़ी की, क्योंकि इनका शुद्ध वैष्णव गुरु नहीं था। यह सत्य कहते हुए आप लोग कुछ मन में हमारे प्रति कुछ भावना खराब रह सकते हैं, किंतु यह समझ रखे यह परम सत्य कह रहा हूं। जाल डालमिया जी थे, डालमिया नहीं, जयदयाल गोविंदिका जी थे, शुद्ध वैष्णव गुरु नहीं था, इसलिए चीजों को समझ नहीं सके। इसलिए इन्होंने गीता प्रेस में ऐसा लिखा, उसका अर्थ भी कद अर्थ कर दिया। ये इसका अर्थ देखिए, सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम का ये तात्पर्य नहीं है कि ये सब पेड़ पौधे सब सिया राम हो गए तो मैं शब्द क्यों लगाया। ये यदि कहते हैं ये सभी सिया राम हैं तो बात बहुत ठीक थी, तो मान ली जाती। जैसे आपके गांव में बहुत जोर से बाढ़ आई, बाढ़ समझते हैं फ्लड आई, और पानी से चारों तरफ में भर गया। उस समय पेड़ पौधे भी जलमग्न हो गए, घर भी जलमग्न हो गए, कुछ कुछ बचे हैं। तो कहते हैं कि अरे भाई सब जगह जलमय हो गया, क्या घर भी पानी बन गया? पेड़ पौधे और ईंट और ये सीमेंट के ये खंभे पिलर जितने थे और मनुष्य जितने थे वह जो दिखाई नहीं पड़ रहे सब पानी हो गए जलमय। उसी प्रकार से भगवान राम और सीता का भाव जिनके अंदर में है, उनके परम भक्त हैं, ऐसा कोई चीज पदार्थ नहीं है जहां पर कि राम और सीता जी नहीं है। इसलिए सिया राम में सब जो भक्त लोग होते हैं, सिया राम में सबको देखते हैं, सबके हृदय में सीता जी को राम को देखते हैं। यदि ये बात होती जो सिया राम ही सब लग रहे हैं तो सिया और राम में कौन तुम हो, सिया हो कि राम हो, ये एक प्रश्न आएगा। तुम सीता जी हो कि राम हो, इसका उत्तर पहले दो, अकल चकरा जाएगी। दो तो हो नहीं सकता, ये भी बात गलत है। इसलिए जिनके अंदर में प्रेम होता है राम और सीता के प्रति, वो एक कौवे के देख करके कहते हैं अरे ये कालभूषण जी भगवान के भक्त हैं, उनको नमस्कार। ये सिया राम का भाव है। आपको देखेंगे कहेंगे आपके अंदर में सीता जी और रामचंद्र जी हैं, इसलिए आपको नमस्कार। वो जगत में जहां उनकी दृष्टि जाती है वहीं पर सीता राम का दर्शन करते हैं, इसलिए उनके भाव को कहते हैं सिया राम मैं। सियाराम नहीं, मैक शब्द संस्कृत का एक है, ये प्रत्यय है। इसका प्रयोग होता है प्रचुर के अर्थ में, प्रचुर माने अधिक के। यहां पर सिया और राम का भाव प्रचुर मात्रा में है, उसको कहते हैं सियाराम। ये कौन कह रहा है सियाराम में सब जगह जानी, कोई भक्त कह रहे हैं, हमारे समय से ये उमा देवी या शंकर जी कह रहे हैं, दोनों में से। तो वो यदि हैं तो वही सीताराम बन जाते, किंतु ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। कालभूषुंडी से बढ़कर के राम का तत्व जानने वाला है कि वो क्यों सीताराम नहीं बन गए, वो सबको प्रणाम कर रहे हैं, राम चित्तेंद्र का सब समय दर्शन कर क्यों कर रहे, कृष्ण का कोई परिकर आज तक कृष्ण नहीं बना, यहां तक इस खुद शंकराचार्य भी पर ब्रह्म नहीं बन सके, और की तो बात क्या। इसलिए रामानुज आचार्य ने, मध्वाचार्य जी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने विशेष करके इन मतों का खंडन करके भक्ति की स्थापना करती है। और उसी प्रकार से हमारे तुलसीदास जी जो रामायण के लेखक हैं, लेखक नहीं प्रकाशक हैं, रामचरित तो बहुत कोटि कोटि कल्पों से है, इसको किसी ने लिखा नहीं, ये अपने आप उनके हृदय में मानस में ये प्रकट हो, इसलिए मानस रामचरितमानस। विशुद्ध हृदय में जब भगवान के प्रति जीव समर्पित हो जाता है तो उनके हृदय में भगवान की लीलाएं प्रकाशित होती हैं, इसलिए इसको रामचरितमानस कहते हैं। संत तुलसीदास के मन में ये प्रकट हुई, वैसे भागवत व्यासदेव के हृदय में प्रकट हुई। व्यासदेव गीता भागवत के ये बनाने वाले नहीं है, उनके हृदय में इसकी उपलब्धि हुई। इस तरह से ये चीज रखेंगे, मैं कभी भी ब्रह्म नहीं हूं, ब्रह्म नहीं हो जाऊंगा मुक्ति, ब्रह्म में मिल करके एक नहीं हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। ब्रह्म से कैसे मिलूंगा, जैसे हम यहां पर 100-150 आदमी हैं और एक आदमी आकर के इसमें बैठ गए, मिल गए, तो क्या वो हम में से किसी में एक में मिलकर के एक बन गए? लाख भेड़ों में एक भेड़ और मिला दो तो वो नंबर बढ़ जाएगा, आप उसको समझ नहीं सकेंगे। इसी तरह से पानी में पानी मिलाने से एक नहीं होता कि हो जाता है, लोगों का भ्रम है, होल ब्रिम पानी भरा हुआ है ग्लास में परिपूर्ण रूप से, और दूसरे ग्लास में पानी पूरा भरा हुआ है, अब उस पानी को उसमें मिलाओ तो क्या होगा, पानी एक हो जाता तो फिर क्या होता, गिरता नहीं, इसलिए पानी बढ़ गया, एक नहीं हुआ। संसार में एक नाम की कोई चीज नहीं है, ये पहले समझिए, कोई भी एक चीज नहीं है। कैसे ए और क मिलकर के एक हुआ, दो अक्षर हो गए ना, एक कहां हुआ, ओ एन ई वन, तृतीय तीन अक्षर हो गए, एक कहां रहा, यदि कहिए ऐसी एक रेखा खींच दी, ये वन हो गया एक, अरे एक में लाखों डॉट्स मिलकर के एक रेखा बनती है, एक हुआ कहां, यूनिवर्सिटी इन गाइस, डाइवर्सिटी यूनिटी, ऐसे होता एकत्व में बहुत। जैसे एक भारत में राष्ट्रपति अभी कोई है, यहां पर भी राष्ट्रपति हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, तो राष्ट्रपति कहने से लाखों प्रजाएं, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, उसमें जितने बैल गाय भैंस मनुष्य लाखों करोड़ों, उसमें सर्प बिच्छू होंगे, पक्षी होंगे, कीट पतंग होंगे, उसमें नदी नाले वृक्ष सभी कुछ होंगे, ये सब मिलकर के एक बना है फिजी, भारतवर्ष बना है, और ये सब ऐसे ही राष्ट्र मिलकर के एक पृथ्वी बनी। तो एक पृथ्वी माने क्या, तो वैसे भगवान कहने से भगवान सब चीजों का मिश्रण, इसमें भगवान उनके अवतार समूह असंख्य जीव, असंख्य ये ब्रह्मांड, ब्रह्मा असंख्य कोटि कोटि मुख वाले शंकर जी असंख्य, ये सब मिला करके एक भगवान है, इसको कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसलिए एक कोई चीज नहीं, और वह एक होने पर तो आकार हो जाएगा, यदि निराकार है तो उसको एक कैसे कहेंगे। इसलिए इन चीजों को छोड़ करके समझेंगे, मैं भगवान का दास हूं, भगवान हमारे प्रभु हैं, वो आकार निराकार इसके अतिरिक्त भी और कुछ है तो सब कुछ है, सब कुछ वही है, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सर्वशक्तिमान है, बड़े दयालु हैं, इसलिए सवेरे उठकर उनको प्रणाम कीजिए, उनकी कथाओं को सुनिए, उनकी लीला कथाओं को सुनिए, और इस तरह से धीरे 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 भगवान की तरफ में चलिए। जरा एक कीर्तन करो तो भक्ति का क्रम विकास, इस पर मैं बोल रहा था। समय तो अधिक नहीं, तो अभी मैं दो एक बातें बतलाना चाहता हूं जो कि आपके जीवन में स्मरण रहे। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही एक मात्र है। किसी को देखा नहीं उसका ध्यान नहीं हो सकता, भगवान को देखा नहीं तो उसका ध्यान क्या करोगे। और यदि राम का ध्यान करते हैं कि धनुष बाण लेकर के हैं तो वो काल्पनिक होगा, यदि कभी राम का दर्शन किया तब तो करेंगे। इसलिए श्री विग्रह को प्रणाम करो, इनको भगवान मानो, ये तो ठीक है, कल्पना करके उनकी मूर्ति मत बनाओ, कृष्ण का काल्पनिक रूप मत बनाओ, वो होने से ठीक नहीं होगा। इसलिए बतला कलयुग केवल नाम आधार, जैसा रूप होगा कृष्ण का है राम का है वो अपने आप आ जाएगा, वो बड़े दयालु, चेष्टा करने से नहीं, शरणागत उनका बन जाओ, सर्वस्व उनको दे दो, सर्वधर्मान परित्यज्य। इसलिए कलयुग में नाम है, कलयुग में दान तप जप ध्यान, अरे और की तो बात क्या, महाजोगी लोग ध्यान करते हैं अस्पराओं के एक नुपुर के झंकार पर ही उनका ध्यान टूट जाता है। विश्वामित्र को देखिए, नारद जी को देखिए, बड़े बड़े तपो ज्ञानी सबको देखिए, एक कोई यहां ध्यान करे तो हम सहसा हरे कृष्ण जोर से कीर्तन करेंगे, उनका ध्यान कहां लगेगा। और कोई कुछ कर रहा हो और हम जोर से खूब उच्चारण करते हुए हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अथवा हम और कोई नाम कर रहे हैं, भगवान राम का नाम कर रहे हैं, जोर जोर से करो तो रेल पास हो जाएगी, जहाज पास हो, कुछ भी पता नहीं रह गएगा। इसलिए कलयुग में नाम है सबसे श्रेष्ठ, ध्यान अपने आप राम का आ जाएगा, जहीं राम या कृष्ण कहेंगे कृष्ण का रूप राम का रूप अपने आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जैसा अगर रियलाइज करा देंगे। अभी बहुत से लोग यज्ञ कराने आते हैं, धोखा देकर के रुपया बटोरने के लिए आते हैं, ये समझ रखिए, तो बिना पैसा का यज्ञ करा दे तो मैं मान लूं, बस पैसे बटोरने की हालत में। कलयुग में ये यज्ञ नहीं, नाम यज्ञ केवल है। यज्ञ में शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेंगे जो निस्वार्थ होकर के यज्ञ का मंत्र उच्चारण कर सके, नमक के बदले में नमो कर देंगे, इधर का उधर कर देंगे, वो यज्ञ भ्रष्ट हो जाएगा। अरे कहीं शुद्ध घी मिलेगा, चर्बी डालडा इत्यादि मिला हुआ घी मिलेगा, कहीं आम की लकड़ी शुद्ध मिलेगी, मन शुद्ध है यज्ञ करने वाले का तो इसमें यज्ञ नहीं होगा। और अजामिल जैसा पापी दुराचारी व्यक्ति भी साधु संघ में आकर के हरिनाम कीर्तन कर सकता है, रात में करो दिन में करो, चलते फिरते उठते बैठते छींकते समय फिसलते समय भी राम राम कर दिया, बस हो गया। इसमें कोई कुछ लगता है, इसमें पैसा लगता है, दिन में करो रात में करो शाम को करो सवेरे करो टट्टी करते हुए करो, कोई भी बात नहीं तो भी काम हुआ। हनुमान का एक विचार है, जहां कोई राम नाम करेगा जरूर पहुंच जाएंगे। एक समय की बात है, नारद जी से एक तेली की भेंट हुई, तेली जानते हैं, तेली जो तेल फेरता था पहले, अब तो वो बड़े बड़े मशीनों में तेल फेर, बैल को लगा दिया, बैल का आंखों को ऐसे लगा दिया और उसको घूमता था, उस पर चढ़ करके हाथ 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 हाँकता था बैलों को, तो उसको फुर्सत नहीं मिलती थी दिन रात, वो तेल भी पीता रहता था। हनुमान जी कार्य भवे व्यक्ति, अरे तुम कभी भी तू नाम तुम करो हरि नाम करो, कुछ मुझको फुर्सत नहीं मिलती है, तटी करते समय क्या करता है, अतः कुछ नहीं तो उसी समय करो, तो उस समय करने वहां जरूर हो जाएगा। तो लोटा लेकर के मैदान में शाम के समय में गया, अपना कार बार बंद करके और वहां पर लोटा रख करके टट्टी करने लगा और वहीं पर राम 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 राम। इतने में राम करते हैं हनुमान जी आ गए, कहिए ये बड़ा बदमाश आदमी, अपवित्र होकर के टट्टी करते समय ये हरिनाम करता है, स्नान करके नहीं करता है, इसलिए एक जोर से लात मारी। जिस लात के मारने से रावण ढिमिलिया खा गया, गिर गया, कुंभकर्ण जैसा विराट आदमी वो गिर करके मूर्छित हो गया, मेघनाथ जैसा व्यक्ति थरहरी कंप हो गया उसको, और ये तेली को कुछ भी नहीं हुआ, वो हरे कृष्ण राम 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 कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। हनुमान ने कि ये क्या आज इतनी जोर से इसको लात मारी, इसकी कचूमर नहीं निकल गई, कचूमर निकलना जानते हैं पीस देना हिंदी के शब्द है इसका कुछ भी बिगड़ा ही नहीं, क्या बात है। सोचते वहां से चले गए, वो भी उठ करके चला गया, ये भी चले गए, राजभवन में राम के यहां पर पहुंचे। तब तक तो रात हो गई है, शाम की ये बात थी, रात हो गई। राम जी पलंग पर लेटे हुए ऊह आह कर रहे, कराह रहे हैं। हनुमान जी ने कहा आज प्रभु हमारे कराह क्यों रहे, निकट में गए प्रणाम करके बोले प्रभु आप कराह क्यों, क्या दर्द हो रहा है, तो तुमने एक लात खूब जोर से मारी और फिर पूछ रहा है जी आप क्यों करा रहे हैं, तुम्हारी लात पा करके मार खा करके कौन आदमी है जो करा है नहीं, दूसरा होता तो मर गया होता। मैंने कहा जी आपको मैंने लात मारी, ये तो कभी संभव नहीं है, अरे तेली को मारा उस समय वो राम राम कर रहा था, तो हाँ कर रहा था, तो राम राम कर रहा था तो मैं उसके अंदर में प्रवेश तो मैंने किया ना, राम नाम और राम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज, कृष्ण नाम और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं, इस चीज को समझो। तो जिस समय वो राम नाम कर रहा था मैं उसके अंदर में पहुंच गया, तो वो लात हमारे ऊपर में लगी, हमारी कमर टेढ़ी हो गई है। हनुमान जी ने कान पकड़ा, अब कहीं नहीं कहे, इसलिए पवित्र अपवित्र टट्टी समते करते हुए भी स्नान करने की बात, उसके पहले भी आधी रात को देर रात को दिन में जब कभी समय मिले तभी भगवान का नाम कर सकते, स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। जो राम नाम कर रहा है कृष्ण नाम कर रहा है वो तो हजारों लाखों बार स्नान उसका हो गया, इस विषय को ठीक रखना। ऐसा सरल सुबह सहज नाम में जिनको रति रुचि नहीं है वो दुर्भागा है, उनके समान जगत में कोई दुर्भागा है, इस चीज को समझ। इसलिए आप लोग भी जब मिले कलयुग में इस नाम के अतिरिक्त आप पवित्र हो ही नहीं सकते, पवित्र नहीं हो सकते, वातावरण सब गंदा है, इसलिए जिस अवस्था में जो व्यक्ति है वो बिना पैसे का, आज स्त्री कमाती है, बेटी कमाती है, बेटा कमाते हैं, बाप कमाता है, सब कमा करके भी घर का पूरा नहीं पड़ता। अब पहले एक मुखिया काम करता था, सब घर भर का पालन पोषण करता था, आज मान ले की कमाई करता है खूब अधिक, तो एक बिल्डिंग मंगाने में भारत से मार्बल आएगा, इटली से मार्बल आएगा, न जाने कहां कहां की क्या चीजें होगी, उसकी सारी कमाई तो उस बिल्डिंग में लग गई, खाने के लिए कुछ बचा नहीं, और स्त्री के पास में काफी माल था वो दूसरी जगह चली गई, फिर इसलिए कमाई पूरी नहीं पड़ेगी भाई। इसलिए बिना पैसे का हरिनाम पवित्रता का भी विचार नहीं है, जहां रहो जैसे रहो भगवान का नाम, इसे सहज ही में जो कुछ होना होगा सब इसी के द्वारा हो जाएगा, जन्म मृत्यु सब पार कर। अंत में एक छोटी सी राम की कथा बतला करके मैं अपना वक्तव्य आज का समाप्त करूंगा। रामचंद्र जी भागवत की तो कथा कह रहा था, किंतु इसमें राम का भी प्रसंग और विशेष करके ये स्थान भी रामचरितमानस का, इसलिए थोड़ी सी उनकी कथा से ही मधुरई न समापये मधुर रूप में उनकी कथाओं को, इस कथा को सुनने से भी आपके चित्त पवित्र हो जाएंगे और भगवान में जरूर मन लगेगा। रामचंद्र जी लंका विजय के पश्चात रावण को वंश कर अयोध्या में आए, उनका राज्याभिषेक हुआ, 11,000 वर्ष राज्य किया। हनुमान इत्यादि पढ़कर उनके साथ 11,000 वर्ष के बाद में उनकी इच्छा हुई अब लीला का संगोपन करेंगे, अब हमको जाना है बैकुंठ में, इसलिए कोई बहाना ढूंढने लगे। जैसे आप लोगों ने, आप लोग जानते होंगे कि रावण ने असल सीता को नहीं चुराया, किसको चुराया, माया सीता को। रामचंद्र जी ने सीता जी को अग्नि में रख दिया था, इसलिए रावण विजय के पश्चात में लंका में अग्नि में जो सीता जी को जलने के लिए जो गई, इसका वो मतलब जलाना नहीं था, बल्कि सीता जी जो अग्नि में थी वो परछाई अग्नि में चली गई और असल सीता जी को अग्निदेव लेकर के राम को समर्पित। असल में सीता जी तो राम से कभी विजुक्त हो ही नहीं सकती, ये लोगों को दिखलाने के लिए था। उसी तरह से एक और कुछ शिक्षा के लिए 11,000 वर्ष के बाद में एक धोबी अयोध्या का, वो अपने स्त्री को शाम को एक लात मारा, इतनी रात हो गई कहाँ थी, मैं राम नहीं जो लंका में एक वर्ष या कितने दिन रही रावण के पास में और फिर उसको रख लिया, मैं तुझे नहीं रखूंगा, ये कहकर से लात मार करके घर से बाहर गया। राम के जो CID थे रामचंद्र जी से आकर के ये बात को कहा, कुछ और CID जो उनके थे कुछ ऐसी ही बातें जो प्रजाओं में हो रही थी वो सुनी, बस सीता जी को त्याग करने के लिए संकल्प किया लक्ष्मण जी के द्वारा, उनको भेजवा दिया जंगल में सदा के लिए प्रत्याग कर, सदा के लिए नहीं माने उस लीला के अंतिम समय के लिए प्रत्याग कर। सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि आश्रम के किनारे पर कहीं पास में गंगा के तट पर छोड़ा, सीता जी वहां पर बेहोश हो गई। प्रसंग बहुत लंबा है, मैं बहुत संक्षेप करके बतला रहा हूं। सीता जी उस समय में गर्भवती थी, वाल्मीकि जी अपनी कन्या समझ करके उनको ले गए और उनका पालन पोषण करने लगे। उनके आश्रम में ही लवकुश का जन्म हुआ और उनका नाम लवकुश था। दो ये संतान एक ही दिन में पैदा हुए, जमज संतान। कुछ दिनों के बाद में ये लोग बड़े हुए, सीता जी अपने हाथों से इनको अस्त्र का अभ्यास कराती और सारी शिक्षाएं देती और वाल्मीकि जी इनको सभी कुछ पढ़ाते थे, अस्त्र शस्त्र सदाचार, शास्त्रों का तात्पर्य अपने यहां से पढ़ाते थे और वाल्मीकि रामायण इनको कंठस्थ रामायण का याद करा दिया और कैसे इसको गाया जाता है वीणा यंत्र पर इसको भी बतलाया। एक तो राम ही जैसा इनका दोनों का रूप, बहुत सुरीला कंठ, जब वीणा पर तान छेड़ते थे तो लोगों का चित्त बरबस खींच लेते थे। एक समय की बात है, रामचंद्र जी अयोध्या में है, यहां सीता जी वनवास में है, राजमहल छोड़ दिया है और राम अपने राजभवन में है, किंतु वहां पर चटाई बिछा करके रहते हैं, खाते हैं क्या, बस थोड़ा सा फल मूल। सीता जी जैसा जीवन व्यतीत कर रही है वैसा वही जंगल वहां पर रह करके, ये जंगल में सीता जी को सांत्वना देने के लिए वाल्मीकि जी हैं, अपने दोनों बच्चों को गोदी में लेकर के सांत्वना मिल जाती है, राम को सांत्वना कौन दे, कोई देने वाला। बड़े दुखी हैं, दिन रात सीता जी के विरह में जल रहे हैं, कहें तो किस से कहें, हमारे समय से सीता जी की अपेक्षा राम ही अधिक दुखी थे, मन नहीं लग रहा। वशिष्ठ जी से कहा, जे प्रभु मैंने सोचा जे यज्ञ करने में हमारा मन लग जाएगा, इसलिए यज्ञ कराने की इच्छा हुई, उस समय के लिए तो भूल ही जाऊंगा, सीता जी को भी भूल जाऊंगा। वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी मैं यज्ञ करना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा तू यज्ञ नहीं कर सकता। क्यों गुरु जी, सीता जी को लाओ तब यज्ञ कर सकोगे, अकेले नहीं कर सकते। तो ये तो मेरे लिए असंभव है, मैं नहीं ला सकता तो यज्ञ नहीं कर सकता, फिर भी कोई उपाय बतलाइए, शादी कर लीजिए, आपके पिताजी के 360 रानियां थी, आप एक सीता जी से और दूसरी कोई स्त्री से विवाह कर लीजिए, सभी स्त्रियां आपसे विवाह करना चाहेंगी, लड़कियां नहीं, ये भी नहीं करूंगा। तो जब मत करो, तो नहीं करूंगा, आप कराइए, तो ऐसे नहीं। तो उपाय बतलाइए, उपाय है सीता जी की सोने की मूर्ति बनाओ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, उसको साथ में बाएं तरफ लेकर के यज्ञ करो। हाँ, ये स्वीकार करो, ठीक, सोने की सीता बनी। और नमिषारण्य में बड़ा भारी विशाल यज्ञ हुआ, सारी माता जी, गुरु जी और जितने रहस्य महर्षि इत्यादि, सुग्रीव, नल, नील इत्यादि जितने राम के परिकर थे, हनुमान, जामवंत इत्यादि सभी का निमंत्रण गया, सभी लोग आए, होने लगा यज्ञ। दो सवेरे शाम को होता, और सवेरे दोपहर में हरि कथा, कुछ पुराणों की कथा होती, और इतने में लौकुश एक दिन वहां आ गए और बड़े सुरीले कंठ से रामायण का गान करने लगे। एक तो राम जैसा सुंदर रूप, अभी उठता हुआ किशोर, 8-9 वर्ष का रूप, बहुत ही सुंदर गला भी वैसे, और ब्रह्मचारी का वेश, सिर के केशों को एकत्र करके बांध दिया जैसे रामचंद्र जी, बांध करके दंडकारण्य में गए और वीणा लेकर सुरीले कंठ से गायन कर, वो भी राजसभा में आकर सभी लोग गदगद हो गए। जब रामचंद्र जी का वनवास सुनाने लगे तो सबकी आंखों से आंसुओं का प्रवाह निकल गया, सभी लोग इतने, रामचंद्र जी भी रोने लगे, कैकई और कौशल्या मैया भी रोने लगी, वनवास के समय मानो यही हो रहा है, अभी लीला ये हो गई। जब लीला समाप्त हुई, मैंने उनकी कथा समाप्त हुई उस दिन, उतने ही सर्व तक, अभी वनवास के बाद में सीता जी का ये वनवास अभी नहीं हुआ था, अभी और सब रोज रोज सुनाते। तो कथा समाप्त होने पर, उनकी गान समाप्त होने के बाद, रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी इस बालकों से पूछो कि इसके बाप का नाम क्या है और कहाँ कराने वाले हैं, इनकी मैया कौन है, जरा पूछो। और एक बात करो, सोने के थाल में मणियों से भरा हुआ, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ ये थाल ले जाओ, उनको दे दो, जो चाहे वही दे दो। लक्ष्मण जी गए, सोने के थाल में सब वस्त्र और हीरा मणि जवाहरात लेकर के गए और उनसे पूछा, बेटे ये बतलाओ, ये तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारे बाप का नाम, मैया का नाम क्या है। लौकुश जो बड़े थे, लौ माने एक ही समय के, तो अभी लौ जी बोले, आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है क्या, आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले हैं, ब्रह्मचारियों से माता पिता का नाम नहीं पूछना चाहिए, जो संसार छोड़कर के भगवान का भजन करने वाले हैं उनका माता पिता का नाम नहीं, उनका गुरु का नाम पूछो। हम लोगों से यदि कोई हमारे माता पिता का नाम पूछता है, अन्याय करता है, हमने तो संसार का सब नाता छोड़ करके भगवान का शरण ले लिया है, इसलिए हमारे सर्वस्व हमारे गुरु जी हैं और प्रभु कृष्ण हैं, तो आपने ऐसा अन्याय करके आप जो पूछते हैं ये उचित नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, जी ये तो बात ठीक ही कहता है, बस सिर नीचा हो गया। फिर कुछ कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे गुरु का नाम वाल्मीकि, वही हमारे सर्वस्व हैं। एक ब्रह्मचारी का जो मठवासी है उसका सब कुछ कौन होता है, गुरु। वो घर में नहीं जाता लौट करके, ब्रह्मचारी वो सन्यासी घर में लौट करके नहीं जाती, जाता है तो वो उस कुत्ते के समान है जो टट्टी काट करके और फिर उसी को खा लेता है, वो सुअर के समान है, उसको हमारे समाज में, हिंदू समाज में, सनातन धर्म में उसको कोई भी प्रतिष्ठा नहीं है। आजकल ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई छोड़ो तो समझ बूझ करके छोड़ने, तो छोड़ मत, संसार में रह करके भजन करो, संसार में भजन करने वाले लाखों में भगवान को पाया है। अरे महाराज जनक और सब गोप लोग, सुग्रीव जी और सब जितने हैं, ये सब तो गृहस्थ थे, वशिष्ठ जी भी तो गृहस्थ थे, यज्ञवल्क्य भी तो गृहस्थ हैं, इसलिए ऐसे मत छोड़ो, समझ बूझ करके जब तुम्हारा अधिकार हो जाए तब छोड़ो, आने तो फिर घर में मत जाओ, ये मेरा घर है, ये मेरी मैया है, ये बाप है, ये कहना तुम्हारा अंडा है, तो तुम उस सुकर के समान हो जो अपने टट्टी करके अपने ही खाती हो। इसको बंताशी कहते हैं, बंताशी माने जो बमन करके उल्टी करके फिर उसको खा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल अधिकांश रूप में ऐसा देखते हैं, रोज रोज घर जाते हैं, कई रुपया कुछ मिलता है तो गुरुजी को एक आना देते हैं और 15 आना किसको देते हैं, अपने मैया बाप के पास में अपनी पहले वाली स्त्री है उसको भी दे आते, घर का नाता नहीं छोड़ता। यह सब गड़बड़ है, कलयुग के सन्यासी लोग अधिकांश ऐसे ही होंगे, इसलिए समझना बुझना चाहिए। तो लक्ष्मण जी सुन करके दंग रह गए, उन्होंने सोने का थाल उनको दिया जैसे बेटे इसको ले जाओ, कहते इससे हमारा क्या संपर्क, गुरु जी के घर में केले के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, गंगा जी पासी में बैठी हैं, पानी पी लेते हैं, पहनने के लिए केले के वृक्ष के छाल हैं उसको पहन लेता हूँ, हमें क्या सिकरी शो का, हमें रुपये पैसे से क्या जरूरत है, ये अपने खजाना में ही रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं, अपनी प्रजाओं में बांट दो, हम तो बाल ब्रह्मचारी, हमको ये जरूरत है। ब्रह्मचारी का जीवन ऐसा होना चाहिए, विषय का अन्न खाएगा तो तुम्हारे चित्त भ्रष्ट हो जाएगा। विषय का अन्न मतलब, विषय किसको कहते हैं, भगवान की सेवा करके भी भगवान से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, ये लोग विषयी हैं। इसलिए जब उन्होंने नहीं लिया, अस्वीकार कर दिया, तो और भी दंग करके दंग रह गए ये दोनों बालक अपनी मैया के पास में वाल्मीकि आश्रम में लौट गए। जब लौटे तो मैया वहां पर पलक पावड़े उनके लिए प्रतीक्षा कर रही थी, कभी दरवाजे पर आती है, कभी कुटी के भीतर में जाती है। आज कुछ देर हो गई विलंब, जाते ही दोनों बालकों को अपने दोनों गोदी में बैठा लिया। अरे बेटे आज इतना विलंब क्यों हुआ, देरी की तुमने क्यों कर। लवकुश ने कहा, मैया यहां पर एक राजा आया है और राजा यज्ञ कर रहा है, तो हम लोगों ने उनको वाल्मीकि जी का ये जो काव्य है उसको सुनाने लगे, उस सब लोगों को, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। किंतु मैया एक बात हमने देखा, क्या देखा, देखा वहां पर एक सोने की मूर्ति हमने देखा, और सोने की मूर्ति कैसी थी, ठीक तुम्हारे समान थी, केवल वो बोलती नहीं थी और तुम बोलती हो, बस इतना ही अंतर। ये सुनते ही सीता जी के आंखों से आंसुओं की धारा गिर गई। राजा राम ने रानी सीता का प्रत्याग किया हो या ऐसा हो सकता है, किंतु ये राम जी हमें कभी भी प्रत्याग नहीं कर सकते, उनके हृदय में मेरा सब समय जगह है, मेरी जगह है। आंसुओं से तब जब हो गई तो उन दोनों बालकों ने कहा कि मैया रोने क्यों लगी, ये बात सुनकर के ये क्या समझ आती है जैसे इन्हीं के ये पति हैं, वो नहीं समझते। जब रोने लगी तो उन्होंने अपनी चादर से मैया का आंसू पोछा, किंतु वो तो रुकता नहीं। इधर में क्या हुआ, रामचंद्र जी ने वाल्मीकि को बुलाया, वाल्मीकि जी मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि सीता जी तुम्हारे पास में है, और ये जो दोनों बालक जो आए आपका शिष्य बतला रहे, ये कोई नहीं हमारे बेटे हैं, हमको तो ऐसा ही लग रहा है। आप जो सोचेंगे और दूसरी बात हो सकती है, आप सब ठीक कह रहे हैं, सब बात ठीक है, हमारे यहाँ ही है और ये दोनों बालक आपसे। अच्छा एक बात करो, आप कल इसी समय में जिस समय के बालक दोनों आए थे उसी समय इन दोनों बालकों के साथ में सीता जी को यहाँ पर लाओ, हमारी राष्ट्र ला सकते हो, जी जरूर ला सकता हूँ। गए आश्रम में लौट करके सीता जी से कहा, बेटी राम तुम्हें बुला रहे, तुम्हारा कर्तव्य है चलना, उन्होंने ऊपर से जगत को दिखलाने के लिए तुम्हें छोड़ा, तुमको हृदय से नहीं छोड़ सकते, तुम उसे कभी विजुक्त हो ही नहीं सकते, तो चलो। तो जरूर चलूंगी। बस दूसरे दिन लक्ष्य उनको लव और कुश को लेकर के वहां पर पहुंचे, राम के सामने जब गई सभी सारी सभा देखने लगी, सबकी नजर कहां गई सीता जी के प्रति, आगे आगे वाल्मीकि जी सीता जी उसके पीछे, दोनों बालक उनके दोनों अंगुलियों को पकड़े हुए आ रहे हैं। राजसभा एकदम शांत प्रशांत होकर के देखने लगी आगे क्या होता है। जब आगे आकर के राम के सामने आई तो रामचंद्र जी ने कहा, सीते तुम पवित्र सब समय कभी अपवित्र नहीं, तुम्हारे ऊपर में हमारा संदेह भी नहीं है, किंतु लोगों के लिए मैं ऐसा चाहता हूं कि प्रमाण हो कि नहीं तुम पवित्र हो। तुमने पवित्रता की प्रमाण लंका में दिया था, महाराज दशरथ खुद आए, उस समय ऋषि महर्षि लोग आए, इंद्र आए और देवता लोग आए, ब्रह्मा जी आए, बोला जैसे ये पवित्र हैं इनको ग्रहण करो, इसने मैंने ग्रहण किया। मैं चाहता हूं कि एक बार समस्त जनसभा के सामने तुम ये दिखलाओ जैसे कि तुम पवित्र हो। सीता अभी भी पवित्रता की परीक्षा मुझे देनी है, एक बार दे देना अच्छा रहेगा। सीता जी ने कहा जो ठीक है। उन्हें कि हे धरित्री, धरित्री मैंने पृथ्वी, हे पृथ्वी देवी तुम मेरी मैया हो, यदि राम के अतिरिक्त मैंने कभी किसी का भी मन से भी स्पर्श किया हो तो तुम फट जाओ और अपनी गोदी में हमें ले लो। तीन बार कही ये बात और तीसरी बार पृथ्वी वहीं पर फट गई, सबके देखते देखते, और नीचे से एक सोने का सिंहासन पर पृथ्वी देवी भूदेवी निकली और सीता जी को अपनी गोदी में लेकर के बैठ गई और नीचे चले गई पृथ्वी जी। हाहाकार सब सभा कर उठी, राम हाहाकार करते हुए धनुष बांट दिया, सब लोग रोने लग गए, लौकुश विलाप करने लगे, मैया तू कहां गई मैया, कौशल्या और सब माताएं रोने लगी, सारी सभा रोने लगी, राम भी रोने लगे, बोले जी पृथ्वी तू मेरी सास है, सीता जी पृथ्वी से ही पैदा हुई थी, आज तुम हमसे तुम अलग कर रही हो, ले जा रही हो, यदि सीता जी को नहीं ले आएगी तो अभी धनुष बाण उठाता हूं, अभी तुम्हें विदीर्ण कर दूंगा। जिसने धनुष बाण उठाया उसी समय वाल्मीकि जी आ गए, हाथ पकड़ लिया, अब आपकी लीला संगोपन का समय हो गया है, आप विलाप मत कीजिए, सीता जी आपसे पहले ही चली गई हैं, वैकुंठ में आपके लिए प्रतीक्षा कर रही हैं, अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, आपके लीला का समय समाप्त हो चुका, अब यहीं पर आप समाप्त कीजिए। राम अपने आसुओं को पूछा, सारी सभाओं को लेकर के लौकुश को भी अपने साथ लिए और अयोध्या गए और वहां जाकर के किस प्रकार से साकेत धाम में गए, ये सब रामायण में वाल्मीकि और पूछे। यहां पर एक चीज देखिए, राम ने सीता को छोड़ दिया, सीता जी ने राम को छोड़ा। आज देखिए आज का समय, पति स्त्री के लिए बिल्लाता है और स्त्री उसे छोड़कर के दूसरे तीसरे चौथे के पास में पहुंच जाती है और स्त्री भी बिल्लाती है, पति भी उस स्त्री को छोड़कर के दूसरे एक दो तीन चार पांच छह सात जितना बार चला जाए कोई भी बात नहीं। आज समाज कहां से कहां तक पहुंच गया है, ये हमारे भारत की संस्कृति है। इस संस्कृति को विचार करके रखेंगे, इसको भी अपने जीवन आचरण करेंगे, वैसे ही भगवान का नाम करेंगे, आप जीवन में सुखी रहेंगे, शांति से रहेंगे। हमारे यहाँ विधवाओं का पहले विवाह नहीं होता था, इसलिए कि विधवा होने पर भगवान को ही अपना पति मान करके उनका भजन करती थी और सारा परिवार उसकी सेवा करता था। आजकल भोग ही प्रधान हो गया, विवाह करो नहीं, विवाह के पहले ही किसी से प्रेम लव करके उसको बच्चा पैदा हो गया, विवाह पीछे हुआ या दूसरे के साथ में हुआ, पहले ये सब बातें नहीं थी, इसके गंभीर विचार थे। मनुष्य जीवन केवल भगवत भजन करने के लिए ही हुआ है। सुअर में भी सुखरी मिल जाएगी, सांप में भी सांपिनी मिल जाएगी, कुत्ते को भी कुत्ती मिल जाएगी, सब जगह ये चीजें भोग हैं, इसलिए मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं है, ये परमार्थ के लिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हमारा कर्तव्य क्या है, इसके लिए। इस पर आप लोग विचार करेंगे, मरने के बाद में एक सुई और सूता लेकर के भी यहाँ से नहीं जा सकते हैं, लाख कमाओ गधे की भांति, लाख गधे जैसे कमाता है, जो कुछ ढोता है वो अपने आप नहीं खाता, दूसरों के लिए सब समय करता है, वैसे लाख आप काम कीजिए ये एक पैसा भी आप साथ में नहीं ले जा सकते, इसलिए इसमें करते हुए भी भगवान का भजन करो। जी का निर्वाह के लिए कुछ करना पड़ेगा, साधन भजन के लिए करो, किंतु भगवान का भजन करते हुए करो। यही हमारा उपदेश है, शास्त्रों का उपदेश है, तुलसी जी का उपदेश है, वेदों का उपदेश है। आज यही करा करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। यदि हमसे कोई कठोर भाषा निकल गई हो आप लोग हमें क्षमा करेंगे, किसी का दिल दुखाने के लिए मैंने नहीं कहा, जो सत्य मैंने समझा है, हमारे शास्त्र जो कहते हैं उसी को मैंने कहा। आप लोग विचार करके देखेंगे कि हमने ठीक कहा है या गलत किया है, यदि ठीक कहा है तो उसको ग्रहण करेंगे, और यदि ठीक नहीं किया है तो हमें क्षमा करेंगे। अभी इसके बाद में आरती होगी, इसके बाद में
नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया पार करेंगे, नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया पार करेंगे, नैया रे भजो कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी कन्हैया
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you.